रागिनी कौन तपस्या कीन है, तीनों लोक के नाथ है, सोते
राधे 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 बरसाने वाली राधे,
राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे,
राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे,
राधे 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 बरसाने वाली राधे,
राधे 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 बरसाने वाली राधे,
राधे 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 बरसाने वाली राधे,
राधे 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 बरसाने वाली राधे,
राधे 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 बरसाने वाली राधे,
बोलो राधे 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 बरसाने वाली राधे,
राधे 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 बरसाने वाली राधे,
राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे राधे बरसाने वाले राधे, राधे 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 बरसाने वाले राधे,
राधे 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 बरसाने वाले राधे, राधे 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 बरसाने वाले राधे,
राधे 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 बरसाने वाले राधे, राधे 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 बरसाने वाले राधे,
राधे 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 बरसाने वाली 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 राधे,
राधे
राधे राधे राधे बरसाने वाली राधे,
राधे 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 बरसाने वाली राधे,
राधे 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 बरसाने वाली राधे,
बोलो राधे राधे
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 मदन मोहन जी
राधे राधे, राधे राधे
राधा दामोदर
राधे राधे,
राधा विनोद जी
राधे राधे,
साक्षी गोपाल में
राधे राधे,
राधा माधव
राधे राधे,
राधा वल्लभ
राधे राधे,
युगल किशोर जी
राधे राधे,
राधा रमण जी
राधे राधे,
विष्णु देव जी
राधे राधे,
द्वारकाधीश जी
राधे राधे,
ईश्वर महादेव
राधे राधे,
ईश्वर महादेव
राधे राधे,
राधे राधे राधे
बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे,
राधे 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 बरसाने वाली राधे,
राधे 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 बरसाने वाली राधे,
राधे 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 बरसाने वाली राधे,
राधे 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 बरसाने वाली राधे,
राधे 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 बरसाने वाली
राधे, राधे राधे राधे
राधे, राधे राधे बरसाने वाली राधे,
राधे 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 बरसाने वाली राधे,
बोलो राधे राधे
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 मान गली में
राधे राधे,
मान गली में
राधे राधे,
सुमन गली में
राधे राधे,
सेवा कुंज में
राधे राधे,
प्रेम गली में
राधे राधे,
कुंज गली में
राधे राधे, राधे राधे
घाट में
राधे राधे,
ऋषि घाट में
राधे राधे,
जीवन में
राधे राधे,
पंचीवट में
राधे राधे,
ब्रह्मा कुंड में
राधे राधे,
अटल वन में
राधे राधे,
हार वन में
राधे राधे,
गोचर वन में
राधे राधे,
गोपाल वन में
राधे राधे,
जीवन में
राधे राधे,
रेणुकूप में
राधे राधे,
कुंज वन में
राधे राधे,
राधा वन में
राधे राधे,
सूरन वन में
राधे राधे,
सतीपुरा में
राधे राधे, राधे राधे,
जुगल घाट में
राधे राधे,
बिहार घाट में
राधे राधे,
मंदिर घाट में
राधे राधे,
गेली कदम में
राधे राधे,
मथुरा जी में
राधे राधे,
गोपेश्वर में
राधे राधे,
विश्राम घाट में
राधे राधे,
स्वामी घाट में
राधे राधे,
भदवन जी में
राधे राधे,
मधुकुंड में
राधे राधे,
ताल वन में
राधे राधे,
कुमुद वन में
राधे राधे,
भराई गाँव में
राधे राधे,
भैसरी गाँव में
राधे राधे, राधे राधे,
भोला वन में
राधे राधे,
राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे,
राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे,
राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे।
राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे,
राधे 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 बरसाने वाली राधे,
राधे 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 बरसाने वाली राधे,
राधे 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 बरसाने वाली राधे,
राधे 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 बरसाने वाली राधे,
राधे 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 बरसाने वाली राधे,
राधे 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 बरसाने वाली राधे,
राधे 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 बरसाने वाली राधे,
राधे 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 बरसाने वाली राधे।
राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे,
राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे।
कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम,
कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम,
कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम,
कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय,
गौरनिताय जय गौरनिताय,
प्रभु पद, प्रभु पद, प्रभु पद श्रील, प्रभु पद,
प्रभु पद, प्रभु पद, प्रभु पद शिल,
प्रभु पद, प्रभु पद, प्रभु पद शिल, प्रभु पद,
प्रभु पद, प्रभु पद, प्रभु पद शिल, प्रभु पद,
जय जय प्रभु पद, प्रभु पद, प्रभु पद, प्रभु पद,
जय जय प्रभु पद, प्रभु पद, प्रभु पद, प्रभु पद।
राधा श्याम सुंदर भगवान की
जय हो,
कृष्ण बलराम की
जय हो,
श्री गौर निताय की
जय,
श्रील प्रभुपाद की
जय,
निताय गौर प्रेमानंद
हरि हरि बोल।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ॐ 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 नमो भगवते वासुदेवाय।
वह शिविपुषि विशदे वसनं जलदाभं, हलहिति भीति मिलिता यमुनाभं, केशवद्रीता हलधर रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे,
जय केशवद्रीता हलधर रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय
फलहति भीति मिलिता यमुनागम केशवद्रित हलधर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे
जय केशव त्रित हलधर रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे
निंदस्यज्ञ विधेरः श्रुति जातम् सदय हृदय दर्शित पशुघातम केशवद्रित बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे
जय केशव त्रित बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे
निंदसि यज्ञ विधेरः श्रुति जातम् सदय हृदय दर्शित पशुघातम केशवद्रित बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे
जय केशव त्रित बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे
लेच्छनि वह निधने कलयसि करवालम धूमकेतुमिव किमपकरालम् केशवद्रित कल्किशरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे
जय केशव त्रित कल्किशरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे
म्लेच्छनि वह निधने कलयसि करवालम् धूमकेतुमिव किमपकरालम् केशवद्रित कल्किशरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे
जय केशव त्रित कल्किशरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे
वेदानुदर ते जगन्ति वहते भूगोलमोद्विभ्रते देत्यं दारयते बलिं चलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते पोलस्यं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान् मूर्चयते दशकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः कृष्णाय तुभ्यं नमः नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाशात देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासाद श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की ओर से प्रस्थापित श्रीमद् भागवत सप्ताह के इस सप्तम और अंतिम दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। परम सौभाग्य से विभूषित हम सब यहां पर पिछले लगातार 6 दिनों से श्रीमद् भागवत अंतर्गत 10 अवतार की कथा श्रवण कर रहे हैं। श्री जयदेव गोस्वामी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने भगवान केशव के द्वारा धृत ये 10 जो अवतार है, इस भगवान के 10 अवतार की जो कथा सुनते हैं, शुणु सुखदम शुभदम भवसारम, इस भवसागर में फंसे हुए लोग यदि भगवान के इस 10 अवतार की कथा का श्रवण करते हैं तो श्रवण करने से सुखदम और शुभदम, इस कथा का श्रवण करने से सुख प्राप्त होता है और जीवन में शुभ प्राप्त होता है। और वह तो आप देख ही रहे हैं, कितने दिनों से राजस्थान में आप सब दुखी थे, बारिश नहीं आ रही है। हमने जब यहां पर हमारा पांव रखा तो प्रधान जी ने सर्वप्रथम हमें यह कहा कि इस राजस्थान में सब कुछ है परंतु पानी नहीं है और कई वर्षों से बारिश नहीं हुई है। हमने कहा हमें भगवत कथा के ऊपर पूर्ण विश्वास है और आप देखिएगा जैसे ही ये कथा संपन्न होगी यहां पर बारिश अवश्य होगी। और मैंने यह भी सुना पिछले कई वर्षों से ऐसी बारिश नहीं आई है और अब तो केवल प्रारंभ है, ये तो मात्र एक ट्रेलर है। जैसे फिल्म देखते हैं तो आपको वहां नंबर दिखाते हैं, ये मात्र एक सैंपल है। यदि आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करोगे तो आप राजस्थान का इतिहास बदल सकते हो और भविष्य को उज्जवल कर सकते हो। ये हम नहीं कह रहे हैं, जयदेव गोस्वामी कहते हैं शृणु सुखदम शुभदम भवसारम। भगवत कथा सुनने से भगवान की भक्ति करने से ही ये बारिश होती है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन अन्नाद भवन्ति भूतानि परजन्यो अन्न संभव। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि संसार में जितने भी जीव हैं ये जीवों के शरीर का आधार अन्न के ऊपर है। अन्नात भवन्ति भूतानि, संसार के भूत संसार के जीव, संस्कृत में जीव को भूत कहा जाता है और हमारे हिंदी में भूत को भूत कहते हैं, भूत प्रेत। परंतु संस्कृत में भूत अर्थात जीव मनुष्य। परंतु हम तो यही कहते हैं कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि कोई भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं वह भूत के समान ही है। देखिए ताली बजा रहे हैं कहीं अपने ऊपर न आ जाए। तो स्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी। मनुष्य जीवन प्राप्त करके जिनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं है जीवन शव समान सो प्राणी। उस मनुष्य का जीवन शव के समान है, मुर्दा। लगता तो है कि वह सांस ले रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, परंतु जिंदा लाश के समान है जो भगवान का भजन नहीं करते। कहते हैं अन्नाद भवन्ति भूतानि। इस संसार में मनुष्य के जो शरीर है ये शरीर अन्न के ऊपर आधारित है। और एक गीता के श्लोक से और एक बात क्लियर होती है कि मनुष्य मात्र अन्न खाने के लिए बना है। ये मांस खाना, मछली, अंडे, ये सब खाने के लिए मनुष्य को नहीं बनाया गया है। अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न खाने के लिए ही मनुष्य बना है। मनुष्य के शरीर का आधार अन्न के ऊपर आश्रित है। अन्न खाना बंद कर दो आपका वजन कम हो जाएगा और एक दिन मर जाओगे। अन्न के ऊपर मनुष्य के जीवन का आधार। अच्छा अन्न का आधार किस पर है? मनुष्य अन्न के ऊपर आधारित है और यह अन्न का आधार वर्षा के ऊपर है। परजन्यो अन्न संभव। हम सब जीव के शरीर का आधार वर्षा के ऊपर है, हम अन्न के ऊपर है और अन्न का आधार वर्षा के ऊपर है। यदि वर्षा होगी तो अन्न उत्पन्न होगे, अन्न होंगे तो हमारा शरीर ठीक रहेगा। तो मानो अर्जुन पूछे कि यह वर्षा किस पर आधारित है? कहते हैं यज्ञात भवन्ति परजन्यो यज्ञत कर्म समुद्भव। ये जो वर्षा है ये बारिश यज्ञ के ऊपर आधारित है। यदि आप यज्ञ करते हो तो निश्चित बारिश होगी। और यदि यज्ञ नहीं करते हो तो बारिश कभी नहीं होगी। और यह बात निश्चित है कि राजस्थान में कोई यज्ञ नहीं कर रहा है। तो आप कहेंगे नहीं, यज्ञ तो हम कर रहे हैं, बहुत सारे यज्ञ चल रहे हैं, परंतु यज्ञ का वास्तविक अर्थ क्या होता है? ये जो यज्ञ है, कुंड बनाकर अग्नि जलाना और स्वाहा स्वाहा करना, ये यज्ञ का प्रभाव मात्र त्रेता युग में था। त्रेतायाम यजतो मखे। परंतु कलयुग में यदि आपको यज्ञ करना है तो वह कुंड और अग्नि वाला यज्ञ काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वह यज्ञ करने के लिए शुद्ध घी चाहिए। बताइए कहां शुद्ध घी मिल रहा है, और वह भी गाय का शुद्ध घी चाहिए। आप कहोगे नहीं, हमारे गांव में तो शुद्ध घी है। हम देखते हैं गांव में भी शुद्ध घी उसे कहा जाता है, गाय का बछड़ा होता है, बछड़ा अपनी माँ गाय का दूध पी लेता है, उसका पेट भर जाता है, तब जाकर जो दूध बचता है वह दूध निकालकर दही बनाकर फिर उससे घी बने, उसे शुद्ध घी कहा जाता है। और हम लोग क्या करते हैं, बछड़े को एक मिनट के लिए लेकर जाते हैं, वात्सल्य भाव से गाय अपना दूध थन में छोड़ देती है, बछड़े को खींच लेते हैं और वह दूध हम पी जाते हैं। यही होता है ना, हमें नहीं पता था, यहां गांव में आकर हमें पता चला कि बेचारे बछड़े को तो मात्र दिखाते हैं और गाय को भी आज लोग ठग रहे हैं। बेचारी गाय प्रेम के स्वभाव वात्सल्य भाव से अपना थन में दूध छोड़ देती है और बछड़े को दूध नहीं देते और स्वयं पी लेते हैं। इसे शुद्ध घी नहीं कहा जाता है। आज न तो शुद्ध घी है, न शुद्ध ब्राह्मण है, न शुद्ध ब्राह्मणों के मंत्र है, इसलिए यह यज्ञ जो है बिल्कुल असंभव है। इसलिए कलयुग में सबसे बड़ा यज्ञ यदि कोई है तो आप कहेंगे प्रमाण दीजिए। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में कहते हैं, यज्ञे संकीर्तन प्राये। कलयुग में सबसे बड़ा यज्ञ भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ठीक।
और यहां पर लगातार 6 दिन से भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन हो रहा है, भगवत कथा का कीर्तन हो रहा है। और इस कथा के कारण यहां पर केवल 6 दिन के यज्ञ से इतना बारिश हो गया। विचार करो, यदि साल भर आप यदि ऐसा यज्ञ करोगे, भगवान के नाम का कीर्तन करोगे, जप करोगे, तब कितनी बारिश होगी। खामखा अलग अलग जगह पर आप मेहनत कर रहे हो, जो मेहनत करनी चाहिए वह नहीं करते हैं और जो नहीं करना चाहिए वह रात दिन करते रहते हैं। यज्ञत कर्म समुद्भव। भगवान का नाम लेना यह सबसे बड़ा यज्ञ है। इसलिए कहते हैं भागवत ज्ञान यज्ञ। ये भागवत जो है ज्ञान यज्ञ है। अब 2 यज्ञ हुए, एक द्रव्य यज्ञ जो हम होम हवन करके यज्ञ करते हैं उसे द्रव्य यज्ञ कहते हैं, और श्रीमद् भागवत को ज्ञान यज्ञ कहते हैं। द्रव्य यज्ञ और ज्ञान यज्ञ में बड़ा यज्ञ कौन सा है? तो भागवत प्रमाण है, स्कंद पुराण में लिखा है, पद्म पुराण में बताया गया है कि द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति यह ज्ञान यज्ञ करता है, संकीर्तन यज्ञ। और भागवत में यहां तक कहा गया है कले संकीर्तन प्राय। इस कलयुग में संकीर्तन यज्ञ ही श्रेष्ठ है, और यजंती ही सुमे धस। कलयुग में जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होंगे वही यह संकीर्तन यज्ञ करेंगे। और दूसरे शब्दों में कलयुग में जो लोग भगवान श्री कृष्ण के महामंत्र का कीर्तन संकीर्तन नहीं करेंगे वो सबसे बड़े मूर्ख होंगे। मूर्ख ही नहीं मूढ़ होंगे जो महामंत्र का कीर्तन नहीं करते हैं। हम सबको बुद्धिमान बनना है और बुद्धिमान बनकर भगवान के नाम का कीर्तन करना है। अब कुछ लोग कहते प्रमाण बताइए प्रमाण बताइए। आज जो बात बीती यहां पर इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। हमने आपको शास्त्र से इतने प्रमाण दिए, भागवत से दिए, पुराणों से दिए, और यह नहीं हुआ तो भगवान ने हूबहू सबको दिखा दिया बारिश करके। मैं पिछले 15 दिन से इंटरनेट में देख रहा हूं और हमारे जो भूगोल शास्त्रीय है उनके कहीं भी खिताब में टीवी में कहीं भी नहीं लिखा है कि आज बारिश होगी। पिछले मैं 15 से 20 दिन से देख रहा हूं, आज भी सुबह मैंने देखा बारिश नहीं है, परंतु फिर भी यह संकीर्तन यज्ञ के कारण यहां पर वर्षा हुई। बताइए इससे बड़े भगवान का दर्शन भगवान की कृपा क्या हो सकती है। अब भगवान अभी इससे ज्यादा क्या बाकी रहा है। भगवान आएंगे थप्पड़ मार के अपनी भक्ति में लगाएंगे, इतना बाकी रहा है। बताने में भगवान ने अब कुछ बाकी नहीं रखा। जयदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि इस दश अवतार कथा सुनने से सुखदम और शुभदम, जीवन में आप सुखी हो जाओगे और मृत्यु के बाद शुभदम आपको भगवान का धाम प्राप्त होगा। सुद गोस्वामी कहते हैं अवतारा ही असंख्येया हरे सत्व निषेद्विजा यथा विदा सिनह कुलिया सरस स्यु सहस्त्रश। जैसे समुद्र में हजारों नाले एकत्रित होते हैं, समुद्र से मिलते हैं, जैसे सरोवर से हजारों नाले बाहर निकलते हैं, वैसे भगवान श्री कृष्ण से हजारों अवतार प्रकट होते हैं। भगवान से अनंत अवतार का प्राकट्य होता है, परंतु उस अवतारों में 10 अवतार की कथा हम यहां पर श्रवण किए। गत सत्र में हमने भगवान श्री रामचंद्र उनके अवतार की कथा श्रवण की। प्रधान जी की इच्छा है कि आप राम कथा भी सुनाइए, परंतु हमारे पास समय बहुत कम है और आपको बहुत कुछ बताना है, बहुत कुछ काम की बातें करनी है, क्योंकि आज का अंतिम दिन है और आज के बाद आज शाम को 8 बजे मैं यहां से निकल जाऊंगा। फिर जीवन में कब मिले न मिले, इसलिए जो सार स्वरूप बातें हैं हम आपको अवश्य बताएंगे। और इसलिए राम कथा आगे न बढ़ाते हुए हम भगवान श्री कृष्ण के 8वें अवतार की कथा श्रवण कर रहे हैं। जयदेव जी कहते हैं वहसी विपुषी विषदेव सनम जलदावम अलहति भीति मिलित यमुनाभम केशव धृता हलधर रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। हे जगत स्वामी, हे केशनी सुदन, हे केशी नाम के दैत्य का वध करने वाले, हे हरि, आपने बलदेव स्वरूप धारण करके अति गौर वर्ण धारण करके नवीन जलदाब अर्थात नए मेघ के समान नील वस्त्र को धारण किया है। मानो ऐसा लगता है यमुना जी आपके हल्के प्रहार से भयभीत होकर आपके वस्त्र में ही छिप गई है। ऐसे हलधर स्वरूप आपकी जय हो। जयदेव गोस्वामी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का आठवां अवतार श्री बलदेव जी है, जिसे हमारे ब्रज में दाऊ जी कहा जाता है। प्रायः बलदेव जी को सब लोग जानते हैं। ये बलदेव जी जो हैं भगवान श्री कृष्ण के प्रथम स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण के प्रथम स्वरूप बलदेव जी, और बलदेव जी के जन्म की कथा भी अद्भुत है। आप सब जानते हैं मथुरा में शूरसेन नाम के राजा रहते थे। वो शूरसेन नाम के राजा के पुत्र जिनका नाम वसुदेव जी था, ये वसुदेव जी का विवाह मथुरा में ही रहने वाले राजा देवक की पुत्री देवकी के साथ हुआ था। और वसुदेव की मात्र एक ही पत्नी नहीं थी, वसुदेव जी की 14 पत्नी थी। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन है, ये 14 पत्नियों के नाम बताए गए हैं, रोहिणी, इंदिरा, वैशाखी, भद्रा, सुनामनी, सहदेवा, शांति देवा, श्रीदेवी, देवरक्षिता, वृक देवी, उपदेवी, देवकी, सुतनु और वडवा। वसुदेव जी की यह 14 पत्नी, जिनमें से 2 दासी थी और 12 के साथ उन्होंने विवाह किया था। जब देवकी के साथ विवाह हो रहा था, आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान कंस के मृत्यु का कारण बनेगी। तब कंस देवकी को मारने चला, वसुदेव जी के मनाने पर देवकी को छोड़ दिया, परंतु अंत में देवकी और वसुदेव को कंस ने कारागार में बंद कर दिया। और उस कारागार में रहते हुए कंस ने देवकी के 6 पुत्र की हत्या कर दी। उन दिनों वसुदेव जी से मिलने के लिए प्राय रोहिणी जी आया करती थी। वसुदेव जी के द्वारा गर्भाधान हुआ, रोहिणी मथुरा में रहती थी, परंतु देवकी के गर्भ में जब 7वीं संतान आई, तब वसुदेव जी ने अक्रूर जी को कहा, कृपया करके आप मेरी सभी पत्नियों को छिपा दीजिए। वसुदेव जी की अन्य 12 पत्नियां अलग अलग स्थान पे जाकर छिप गई। 13वीं पत्नी देवकी उनके साथ थी, और अक्रूर जी ने रोहिणी को रात ही रातों रात नंद बाबा के पास गोकुल में भेज दिया। कवि कर्णपुर आनंद वृंदावन चंपू और जीव गोस्वामी गोपाल चंपू में इसका वर्णन करते हैं कि जब रोहिणी गोकुल में आई, तब उनका गर्भ 3 महीने का था, और उस समय यशोदा भी गर्भवती थी। कुछ दिनों के बाद वह गर्भ धीरे धीरे बड़ा होता गया, और यहां देवकी के गर्भ में 7वां पुत्र, 7वीं संतान आ चुकी है। देवकी के गर्भ में 7वीं संतान आई, उसे 7 महीने बाद भगवान श्री विष्णु ने योग माया को अपने धाम में बुलाया, और बुलाकर भगवान श्री विष्णु कहते हैं कि हे देवी, गच्छ देवी व्रजम भद्रे गोप गोभी अलंकृतम, आप जाओ ब्रज में, और ब्रज में जाकर सबसे पहले मथुरा में देवकी के गर्भ में बलदेव जी का प्रादुर्भाव हुआ है। देवकी के गर्भ में उस बालक को निकालकर रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। भगवान के कहने पर योग माया ने देवकी के गर्भ से उस बालक को निकाला, और रोहिणी के गर्भ में स्थित किया। भगवान ने योग माया को भेजा है। योग माया ने देवकी के गर्भ से उस बालक को निकालकर रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया और रोहिणी के गर्भ से भाद्रपद शुक्ल पक्ष स्वाति नक्षत्र बुधवार के तुला लग्न में 11 बजे बलदेव जी का जन्म हुआ। कहते हैं जैसे एक सिंहनी सिंह को जन्म देती है, जैसे सुगंधित सुंदर कमल श्वेत रंग के कमल को जन्म देता है, वैसे ही रोहिणी के गर्भ से बलदेव जी का जन्म हुआ। जैसे ही बलदेव जी का जन्म हुआ, देवतागण फूल बरसाने लगे। समस्त देवतागण आकाश में आकर आनक धुंधु भी बजाने लगे। गौर अंग कांति नंद भवन को उद्भाषित करने लगी। सबके मुख पर हास्य है, बलराम भी हंस रहे हैं, ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो रहे हैं, देवता शंख ध्वनि कर रहे हैं, समस्त देवता एक साथ जय जयकार कर रहे हैं। बलदेव जी का मुख पूर्ण चंद्र के समान है। बलदेव जी के नेत्र विद्युत पुंज के समान। बलदेव जी का शरीर सूर्य समान तेजस्वी है। बलदेव जी का वर्ण शरद कालीन मेघ के समान शुभ्र गौर वर्ण। यह सब होना उपयुक्त है, क्योंकि यह बालक प्राकृत गंध शून्य दिव्याति दिव्य अनंत शेष ही बलदेव जी का रूप लेकर प्रकट हुए हैं। जैसे ही बलदेव जी प्रकट हुए, नंद बाबा ने बहुत बड़ा उत्सव किया। अनेक लोग आए, ऋषि मुनि आए, साधु संत महात्मा आए, और इससे नंद बाबा का हृदय हर्षित हुआ। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन है, बलदेव जी का दर्शन करने के लिए अनेक साधु संत आए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को पूछते हैं, कहे सुखदेव गोस्वामी, रोहिणी ने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसके कारण उनके गर्भ से साक्षात अनंत जी, साक्षात अनंत शेष बलराम के रूप में अवतरित हुए? बताइए रोहिणी ने ऐसा क्या किया था। तब सुखदेव गोस्वामी रोहिणी के पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। परीक्षित, चाक्षुष मन्वंतर में ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को सृष्टि बढ़ाने के लिए आदेश दिया। दक्ष प्रजापति ने सर्वप्रथम अपनी पत्नी से 10,000 पुत्र को जन्म दिया। नारद मुनि ने सबको भक्त बना दिया, ब्रह्मचारी बना दिया। तत्पश्चात दक्ष प्रजापति ने 1,000 पुत्र को जन्म दिया, उनको भी ब्रह्मचारी बना दिया। तब ब्रह्मा जी के कहने पर दक्ष प्रजापति ने पुत्री को, कन्या को जन्म दिया। दक्ष प्रजापति से 60 कन्या उत्पन्न हुई और उस 60 कन्याओं में से 11 कन्या का विवाह कश्यप ऋषि के साथ किया गया। उस 11 कन्या में से एक कन्या का नाम कद्रु था और एक कन्या का नाम अदिति था। एक समय की बात, अदिति को पुत्र प्राप्त करने की इच्छा हुई। अपने पति को बुलाया, उनकी बहुत राह देखी, पति कश्यप आए नहीं। अदिति को पता चला कि कश्यप जी को कद्रु ने रोक कर रखा है। तब अदिति ने कद्रु को श्राप दे दिया। कि तुमने एक मृत्यु लोक में रहने वाली स्त्री की तरह कार्य किया है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम मृत्यु लोक पर स्त्री बन जाओ। कद्रु ने अदिति को श्राप दिया, तुम मुझे श्राप दे रही हो, मैं तुम्हें श्राप दे रही हूं, तुम भी स्त्री बन जाओ मृत्यु लोक में, और स्त्री बनकर तुम्हें बहुत दुख सहन करना पड़ेगा। कश्यप जी की ये दोनों पत्नी एक दूसरे को श्राप दे रही थी, कश्यप जी ने रोक लिया। कद्रु ने अदिति को श्राप दिया, मृत्यु लोक पर स्त्री के रूप में जन्म होगा और दुखी होगी। अदिति द्वापर युग में देवकी हुई, कश्यप जी वसुदेव हुए और कद्रु रोहिणी के रूप में जन्म लिया। इसी के कारण रोहिणी के गर्भ से बलदेव जी का जन्म हुआ। जब बलदेव जी का जन्म हुआ तो उस समय वहां पर देवल, देवरात, वशिष्ठ, बृहस्पति, नारद, वेदव्यास, अनेक ऋषि मुनि पधारे और अनेक ऋषि मुनियों ने आकर बलदेव जी को प्रणाम किया, स्तुति की। अनेक श्लोकों में स्तुति है परंतु हमारे पास समय बहुत कम है और बारिश आने की तैयारी है, इसलिए मैं आपकी कथा संक्षिप्त में कह रहा हूं। बलदेव जी की अनेक लीला है परंतु उनमें से एक लीला का आपको श्रवण करा दूं। बलदेव जी का विवाह जो है अद्भुत विवाह है। विवाह की कथा इस प्रकार से है, सूर्य वंश में महामनस्वी राजा आनर्त का जन्म हुआ। ये राजा आनर्त के पुत्र हुए रैव और राजा रैव के पुत्र हुए रैवत, और रैवत की एक बहुत सुंदर पुत्री थी। संसार में इतनी सुंदरता अद्वितीय। राजा रैवत ने अपनी पुत्री के लिए पूरी दुनिया में वर ढूंढा परंतु योग्य वर कहीं नहीं मिला। तब राजा रैवत अपने सोने के रथ पे सवार होकर अपनी पुत्री को उस रथ में बिठाकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी आप बताइए कि मेरी पुत्री का विवाह किसके साथ होगा। यह कहने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए परंतु उस समय ब्रह्मा जी भगवान के भजन में मग्न थे। जब ब्रह्मा जी भजन से निवृत्त हुए तब राजा रैवत ने ब्रह्मा जी को कहा कि मेरी पुत्री का जन्म तो हुआ है परंतु इसके लिए योग्य वर आपने चुना है, इसके लिए योग्य वर कौन है। तब ब्रह्मा जी हंसने लगे कि राजन आप पृथ्वी छोड़कर ब्रह्म लोक में आए हो और आप जानते नहीं हो ब्रह्म लोक में एक सेकंड जब बीतती है तो पृथ्वी लोक में युग के युग बीत जाते हैं। आप जल्दी पृथ्वी लोक पर वापस जाओ। बोले लेकिन मेरी पुत्री के लिए योग्य वर कहाँ है। बोले आप पृथ्वी से यहां आए, पृथ्वी पर अनेकों युग बीत गए, जब ब्रह्मा जी के लोक में ब्रह्मा जी के 24 घंटा बीतते हैं तब हमारे यहां पर 8 अरब और 64 करोड़ वर्ष बीतते हैं। कल्पना कीजिए कितने वर्ष बीत गए होंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का अवतार हो चुका है, उनके बड़े भाई बलदेव जी का अवतार हो चुका है। आपकी कन्या रेवती के लिए योग्य वर बलदेव है, द्वारिका में जाओ और उनका विवाह कराओ। उसी समय राजा रेवत पृथ्वी लोक पर आए और अपनी कन्या रेवती का विवाह बलदेव जी के साथ कराया। परंतु बलदेव जी ने रेवती के साथ विवाह तो किया, परंतु इस विवाह के कारण बलदेव जी को देखकर सब लोग हंस रहे थे। कारण यह था कि बलदेव जी का कद हाइट बहुत कम थी और रेवती की हाइट बहुत लंबी थी। आप समझ सकते हो कलयुग में मनुष्य की उम्र 100 साल की बताई गई है, द्वापर युग में 1000 वर्ष तक जीते हैं, त्रेता युग में 10000 वर्ष तक जीते हैं और सतयुग में 1,00,000 वर्ष तक जीते हैं। रेशियो के अनुसार यदि देखा जाए कलयुग में यदि 100 साल की आयु है तो 100 को 100 बार लेंगे तब द्वापर युग में एक 10,000 वर्ष की आयु होती है, 10 बार लेंगे तो 1,000 वर्ष होते हैं। द्वापर युग में कलयुग का 10 गुना आयु है। उसी प्रकार कलयुग में मनुष्य की जो कद है हाइट है उससे 10 गुना हाइट द्वापर युग में होती थी। तो मानो कलयुग में यदि किसी की हाइट 6 फुट की है तो द्वापर युग में 60 फुट के लोग होते थे। द्वापर युग में यदि कोई 60 फुट का होता था, द्वापर युग में यदि कोई 60 फुट का होता था तो त्रेता युग में 600 फुट के होते थे। और त्रेता युग में 600 फुट तो सतयुग में 6,000 फुट। अब देखिए बलदेव जी है 60 फुट के और रेवती है 600 फुट की। पति पत्नी का मेल कोई ठीक नहीं है। बलदेव जी को अपनी पत्नी के सामने देखना तो ऐसे देखते थे, तब संसार के लोग हंसेंगे नहीं तो क्या करेंगे। बलदेव जी ने सोचा कि ये लोग हंस रहे हैं मेरी पत्नी को देखकर। तब बलदेव जी के हाथ में केशव दीता हलधर रूपा, बलदेव जी के हाथ में अद्भुत हल है, वो जितना चाहो उतना लंबा हो सकता है छोटा हो सकता है। बलदेव जी ने अपने हल को लंबा किया और अपनी पत्नी रेवती को यहां पर फिट कर दिया और जोर से बलदेव जी ने उस हल को खींचा। रेवती की हाइट भी कम हो गई, बलदेव जी के बराबर समान किया गया। तो ऐसी एक नहीं बलदेव जी की अनेक लीलाएं हैं जो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में द्वापर युग में जन्म लिए। मन में प्रश्न हो सकता है कि बलदेव जी कृष्ण के अवतार हैं। बलदेव कृष्ण के अवतार हैं इसलिए तत्व से बलदेव जी कृष्ण से छोटे हैं, परंतु द्वापर युग में बलदेव जी कृष्ण के बड़े भाई हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण एक यह भी है कि त्रेता युग में यही बलदेव जी भगवान राम के छोटे भाई बनकर आए थे और भगवान श्री रामचंद्र सत्य पर अड़ग थे और इसके लिए भगवान ने अपने ऊपर अनेक कष्ट सहन किए। तब लक्ष्मण जी ने भगवान श्री रामचंद्र को कहा कि भैया मैंने आपकी इतनी सेवा की, रात दिन मैं आपके साथ रहता हूं, सेवा करता हूं, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, परंतु मैं आज एक चीज मांगना चाहता हूं। क्या? बोले भैया जीवन भर तक हमको मात्र दुख सहन करने पड़े, वनवास जाना पड़ा और आपकी बात मानने के कारण अब मेरी एक ही इच्छा है कि अगले अवतार में जब हमारा जन्म हो तो मैं आपका बड़ा भाई बनना चाहता हूं। तब भगवान रामचंद्र ने तथास्तु कहा और त्रेता युग के बाद द्वापर युग में लक्ष्मण जो है बलदेव जी बड़े भाई के रूप में और कृष्ण छोटे भाई के रूप में। लीला की दृष्टि से यदि देखा जाए तो बलदेव जी बड़े हैं, कृष्ण छोटे हैं, परंतु तत्व से यदि देखा जाए तो कृष्ण बड़े हैं और बलदेव जी छोटे हैं। तो इस प्रकार से बलदेव जी के अनेक चरित्र हैं। श्रील प्रभुपाद जी बलदेव जी को सफेद कृष्ण कहते थे, बलदेव इज ए व्हाइट कृष्ण। बलदेव जी जो है, कृष्ण और बलदेव में कोई अंतर नहीं, केवल रंग मात्र भेद। आप कभी नंदगांव गए हो? कितने लोग गए हैं, हाथ ऊपर कीजिए। लो, इसीलिए बारिश नहीं होती है। कभी भगवान के धाम में जाना चाहिए, गोकुल, मथुरा, वृंदावन, द्वारका, जगन्नाथपुरी। केवल बस ये ईंट और मिट्टी से बनाए हुए घर में सड़ोगे और रहोगे? घर से निकलिए कभी। नंदगांव में कृष्ण और बलदेव जी का विग्रह है, आप गए हो? क्या विशेषता है उनकी, कौन जानता है? नंदगांव में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर थोड़े पहाड़ के ऊपर है, और उस मंदिर में कुछ विशेषता है। विशेषता क्या है? कृष्ण ने जिस रंग के वस्त्र पहने हैं उसी रंग के वस्त्र बलदेव जी ने पहने हैं। दोनों के हाथ में बंसरी है, दोनों के सिर पर समान मुकुट है, दोनों के सिर पर मोर पंख है, और लगता है दोनों कृष्ण है। मैं भी देखकर हैरान हो गया, इसमें कृष्ण कौन और बलदेव कौन? तो हमने हमारे गुरु महाराज से पूछा, ये सब क्या है, दो दो कृष्ण? बोले ऐसा नहीं है। बोले ब्रज में बहुत सारे असुर कृष्ण को मारने के लिए आते थे, और कृष्ण के ऊपर खतरा बना रहता था, अगासुर, बकासुर, त्रिणावर्त, पूतना इत्यादि। तब बलदेव जी ने सोचा कि ये सारे असुर कृष्ण को टारगेट बनाकर आते हैं, कृष्ण को मारने के लिए आते हैं, इसलिए मैं कृष्ण का वस्त्र पहन लूंगा, कृष्ण के जैसा पीतांबर, हाथ में मुरली और सिर पर मोर पंख, और कोई भी असुर आएगा तो उसे मुझसे युद्ध करना होगा। तो इसका भाव ये है कि बलदेव जी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में रहते हैं, और वे चाहते हैं कि कोई भी असुर कृष्ण पर वार न करे, वे स्वयं कृष्ण की रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार बलदेव जी की अनेक अनेक लीलाएं हैं। बलदेव जी ने प्रलंबासुर का वध किया, यमुना को दो भाग में बांट दिया। बलदेव जी के विषय में मुख्य बात तो यह है कि संसार में कोई भी व्यक्ति एक रस में भगवान की सेवा करता है। कुछ लोग वात्सल्य रस में, कुछ लोग माधुर्य रस में, कुछ लोग साख्य रस में, कुछ दास्य रस में, परंतु बलदेव जी भगवान के एक ऐसे अवतार हैं, ऐसे भक्त हैं जो पांचों रस में भगवान की सेवा करते हैं। अब आप सब पहली बार भागवत कथा सुन रहे हो, ये रस क्या है ये आपको नहीं पता होगा, परंतु इतना ही समझिए कि बलदेव जी पांचों रस में कृष्ण की सेवा करते हैं। इस प्रकार बलदेव जी भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं और उनकी अद्भुत लीलाएं हैं। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण का नौवा अवतार है बुद्ध अवतार। निंदस यज्ञ विदेह श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम केशव धृता बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। भगवान ने बुद्ध शरीर धारण करके वेदों की निंदा की। देखिए बुद्ध अवतार को समझना बहुत आवश्यक है। कुछ लोग इस अवतार और इस अवतार के प्रयोजन को नहीं समझने के कारण बौद्धिष्क हो जाते हैं, नास्तिक हो जाते हैं। इसलिए इस बुद्ध अवतार को ध्यान से श्रवण करना चाहिए। कि भगवान ने इस अवतार में वेदों की निंदा की, यद्यपि भगवान ने ही वेदों की स्थापना की और वेदों की स्थापना करने वाले भगवान वेदों की निंदा कर रहे हैं। क्यों? इसके पीछे एक कारण है, कुछ प्रयोजन है। कारण क्या है? कारण यही है कि एक समय की बात, असुरों ने मिलकर देवराज इंद्र को पकड़ा और सभी असुर देवराज इंद्र के चरणों में गिर गए, प्रणाम किए, दंडवत किए। वैसे तो देवराज इंद्र और असुर रणभूमि के अलावा कहीं नहीं मिलते हैं, जब मिलते हैं तब युद्ध होता है। परंतु ये असुर लोग एक दिन क्या पता देवराज इंद्र के पास आए और इंद्र को प्रणाम किए और इंद्र को पूछा कि हमारे राज्य को स्थिर रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आप लोग ऐसा क्या करते हो कि आप स्वर्ग पर राज करते हो और कभी स्वर्ग को छोड़ना नहीं पड़ता है, हमें भी ऐसा करने के लिए क्या करना चाहिए। तब देवराज इंद्र ने निस्वार्थ भाव से सत्य सत्य बता दिया कि हम लोग स्वर्ग में स्थिर इसलिए रहते हैं क्योंकि हम यज्ञ करते हैं। आप लोग भी यदि यज्ञ करो तो आप अपने स्थान पर स्थिर रह सकते हैं। उस दिन से सभी असुरों ने यज्ञ रहना प्रारंभ किया। परंतु असुरों का यज्ञ करना तो आसुरी स्वभाव युक्त होगा। असुर लोग भी यज्ञ करने लगे, परंतु उस यज्ञ में तामसिक यज्ञ करने लगे। वास्तव में सतोगुणी यज्ञ होना चाहिए, शुद्ध सत्व यज्ञ होना चाहिए, परंतु असुरगण जब यज्ञ करते हैं तो वह तामसिक यज्ञ करते हैं। तामसिक यज्ञ करने लगे और यज्ञ में पशुओं का वध करने लगे, पशुओं की बलि देने लगे। असुर न तो पवित्र होते हैं न शुद्ध होते हैं। देवता जब यज्ञ करते हैं, मानो कभी पशु की बलि भी दी जाए, तो देवताओं के द्वारा यज्ञ करने पर पशु की बलि देते हैं तो वह पशु देवता बन जाते हैं, उनका उद्धार हो जाता है। परंतु ये असुर लोग अपवित्र हैं, ये जब यज्ञ करते हैं और पशु की बलि देते हैं तो पशु का उद्धार नहीं होता, पशु देवता नहीं बनते, पशु बेचारे खामखा मर जाते हैं, पाप होने लगता है। ये असुर लोग यज्ञ करने लगे, पशुओं की बलि देने लगे, जिसे तामसिक यज्ञ कहते हैं, और इस असुरों की परंपरा इस संसार में चलने लगी। द्वापर के अंत में, कलयुग के प्रारंभ में, प्रायः इस संसार के लोग वेदों का सहारा लेकर यज्ञ करने लगे और यज्ञ में पशुओं की बलि देने लगे। और पशुओं की बलि देना ये तो मात्र उनका बहाना था, यज्ञ करना बहाना था। वो पशुओं को काट कर खाना चाहते थे, अपनी इंद्र तृप्ति करना चाहते थे। एक बार रामकृष्ण परमहंस के एक मित्र थे, दुर्गा देवी के भक्त थे और वे बहुत पशु बलि देते थे। तो बहुत दिनों के बाद वो दुर्गा जी के भक्त रामकृष्ण परमहंस, जो विवेकानंद जी के गुरु हैं, उसे मिले। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि आपका यज्ञ कार्य ठीक से तो चल रहा है, पहले आप बहुत यज्ञ कर देते, अभी भी ये सब यज्ञ वगैरह चल रहा है ना? बोले अब यज्ञ करना बंद कर दिया है। बोले क्यों? अब मेरे दांत नहीं रहे ना, इसलिए यज्ञ करना बंद कर दिया है। सोचिए, इस संसार में बड़े से बड़े लोग स्वयं पशुओं को खाने के लिए, स्वयं इंद्र तृप्ति करने के लिए यज्ञ करते हैं। ऐसा ही कार्य इस संसार में होने लगा, पशुओं की हिंसा होने लगी, यज्ञ में पशुओं की बलि देने लगे और अत्याचार होने लगा। और जब उस लोगों को कहा जाता कि आप ये पशु बलि क्यों देते हो, तब वे कहते थे वेदों में लिखा है। तब उस समय भगवान श्री कृष्ण को सहस अचानक एक अवतार लेना पड़ा और उस अवतार का नाम है बुद्ध अवतार। और भगवान ने बुद्ध अवतार धारण किया और इस बुद्ध अवतार में इस संसार के लोग प्रायः वेदों का सहारा लेकर यह तामसी यज्ञ करते थे और भगवान कहते थे आप यज्ञ मत करो, तो कहते थे वेदों में लिखा है। तब वहां पर भगवान ने आत्यंतिक एक निर्णय लिया कि ये लोगों को पशु हिंसा या अहिंसा हिंसा बंद कराने के लिए कुछ करना होगा। उस समय भगवान बुद्ध ने अनाउंसमेंट किया कि वेद गलत है, वेद को हमें नहीं मानना है, वेदों में गलत लिखा है। तब इस संसार के लोग यज्ञ करना और पशु बलि देना बंद किए। लेकिन हम तो बुद्धिमान हैं, हमें इस बात को जानना चाहिए कि भगवान ने वेद को गलत इसलिए कहा क्योंकि उस समय के लोग वेदों का सहारा लेकर गलत कार्य कर रहे थे। इसका अर्थ ये नहीं कि वास्तव में वेद गलत है, परंतु भगवान बुद्ध ने उस समय उन पापियों को के पाप को बंद कराने के लिए वेद को गलत कहा। लेकिन कुछ लोग वर्तमान में इस बात को समझ नहीं पाए और कहते हैं कि बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं और बुद्ध ने जो कहा है हमको ये करना है, भगवान बुद्ध ने कहा है वेद गलत है, तो वास्तव में वेद गलत है, वेद को हमें नहीं स्वीकारना। इसलिए इस संसार में प्रायः कुछ लोग बुद्ध धर्म का पालन करते हैं, बौद्धिष्ठ हो गए हैं, वे वेदों को नहीं मानते। तो इस प्रकार भगवान और भगवान के प्रयोजन को जानना चाहिए। भगवान बुद्ध की अनेक अनेक लीलाएं हैं, संक्षिप्त में आपको कह दूं। भगवान बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन था, बहुत धनी राजा थे और उस राजा के एक राजकुंवर पुत्र थे भगवान बुद्ध। क्योंकि गौतम वंश में इनका जन्म हुआ था इसलिए इसे गौतम भी कहा जाता है, परंतु पिता के द्वारा रखा गया नाम इसका सिद्धार्थ था। जन्म से ही वैराग्यशाली थे, जन्म से ही संसार के प्रति वैराग्य था और यह सिद्धार्थ को दूसरे के दुख को देखकर हृदय में बहुत दुख होता था। इसलिए राजा शुद्धोदन ने अपने राज्य में ऐसी व्यवस्था की कि मेरे पुत्र सिद्धार्थ को किसी का दुख नहीं देखना चाहिए। एक दिन सिद्धार्थ ने किसी बालक को देखा, उसी दिन एक जवान को देखा और उसी दिन उन्होंने एक बूढ़े को देखा और उसी दिन एक शमशान यात्रा में जाने वाले मृत देह को देखा। तब उस सिद्धार्थ को पता चला इस संसार में जो आता है उसे मरना पड़ता है। इतना सोचकर सिद्धार्थ ने अपने पिता को कहा, पिताजी मैं यह घर में रहना नहीं चाहता हूं, मैं इस घर से निकलकर मृत्यु पर विजय प्राप्त करना चाहता हूं। पिताजी राजा थे और एक ही पुत्र था, अपने पुत्र को घर में रखने के लिए अच्छी सी अच्छी स्त्री के साथ यशोधरा नाम की लड़की के साथ सिद्धार्थ का विवाह करा दिया गया। विवाह करके सिद्धार्थ का एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम था राहुल। लेकिन फिर भी यह सिद्धार्थ का मन संसार में नहीं लगता था और एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी लक्ष्मी की तरह अपनी पत्नी और इंद्र के समान ऐश्वर्य को छोड़कर वन में चले गए और वन में जाकर तपस्या करने लगे। इतनी तपस्या कि यह पूरा शरीर सूख गया। एक दिन कुछ महिला रास्ते में गाते हुए जा रही थी, महिलाओं का स्वभाव है गाती रहती है, गुनगुनाती रहती है। महिला रास्ते में गाते हुए जा रही थी, वैसे तो वे भौतिक गीत था परंतु यह सिद्धार्थ ने सुन लिया। गीत का भाव क्या था? भाव ये था सितार के तार को इतना ढीला मत छोड़ो ताकि वह सितार बेसुरा हो जाए। सितार जानते हैं ना, तार से बजता है। सितार के तार को इतना ढीला मत छोड़ो ताकि वह बेसुरा हो जाए, और सितार के तार को इतना खींचो मत ताकि वह टूट जाए। वाह, समझ गए आप लोग, बुद्धिमान बैठे हैं। ये लोग गाना गा रहे थे, सितार के तार को इतना मत ढीला मत छोड़ो ताकि वह बेसुरा हो जाए, और सितार के तार को इतना मत खींचो ताकि वह टूट जाए। ये तो भौतिक गाना था, परंतु सिद्धार्थ ने इस पर उपदेश ग्रहण किया कि हमको जीवन में इतना भोग नहीं भोगना चाहिए ताकि हम भोगी हो जाए, और जीवन में इतनी भी तपस्या नहीं करनी चाहिए ताकि हम भगवान की भक्ति करने लायक न रहे। इसलिए बैलेंस बनाकर रहना चाहिए। इस प्रकार ये महिलाओं के भौतिक गान से इन्होंने बहुत सुंदर बुद्धि प्राप्त की, इसलिए इनका नाम हो गया गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध इनका नाम हुआ, और बहुत सुंदर आगे चलकर उन्होंने कई लोगों को उपदेश दिया, और उपदेश देकर कई लोगों को अपना अनुचर बनाया। गौतम बुद्ध का एक गुण था कि वे बहुत शांत और सहनशीलता वाले थे। भगवान के भक्त का यह गुण होना चाहिए, शांत और सहनशीलता। एक बार गौतम बुद्ध ने भरद्वाज नाम के ब्राह्मण को उपदेश देकर ब्रह्मचारी बना दिया, घर बार छुड़ा दिया। तो भरद्वाज नाम के उस लड़के के माता पिता आए और गौतम बुद्ध को बहुत गाली दिए, बहुत अपशब्द बताए। आधे पौने घंटे तक वह अब शब्द बोलते रहे। फिर गौतम बुद्ध ने शांति से उनको कहा कि आपके घर पर कभी अतिथि आते हैं? बोले, अतिथि तो हमारे घर पर आते हैं। बोले, आप उनका स्वागत करते हो, कुछ उनको देते हो? बोले, हाँ, उसको पानी देते हैं, जल देते हैं। बोले, यदि वह जल ग्रहण न करे तो क्या करोगे? बोले, जल हमको हम रख लेंगे। बोले, इसी प्रकार आप हमें एक डेढ़ घंटे से गाली दे रहे हो, यदि हम आपकी गाली को न रखे तो किसके पास रहेगी? भरद्वाज के माता पिता पानी पानी हो गए, वापस चले गए कि हमारा लड़का जहां पर है अच्छी जगह पर है। हमारे राजस्थान, इस कथा के पहले नरवर गांव में कन्हैयालाल जी ने बहुत सुंदर भागवत कथा का आयोजन किया था, और उस कथा में भागवत कथा को सुनकर नरवर गांव में रहने वाले माता पिता और उनका पुत्र जो हमारे बीच में बैठा है निर्मोही, मात्र 7 दिन कथा सुनकर माता पिता इतने जागृत हो गए और यह बालक के हृदय में इतनी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति आई, अपने माता पिता को कह दिया कि अब मैं लाल गोविंद दास के साथ रहना चाहता हूं। और माता पिता अपने इस बालक को लेकर आए हमारे पास और कहा कि आप मेरे बालक को रखिए और आपके साथ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगाइए। धन्य है ऐसे माता पिता जो अपने पुत्र को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगाते हैं। हम जब मुंबई से आ रहे थे तो कई लोगों ने कहा कि आप कहां कथा करने जा रहे हो, क्योंकि हमारी कथा मुंबई में बड़ी बड़ी जगह पर होती है। कई लोगों ने रोका और कैंसिल कराने का प्रयास भी किया, परंतु मैंने कहा नहीं, हम राजस्थान जाएंगे और राजस्थान हम यहां पर कथा करने के लिए आए, और वहां नरवर गांव में कथा की, और कथा करने के बाद वास्तव में उस कथा का फल मिला यह निर्मोही, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। और गुलर गांव वाले को भी छूट है, जिनको जमा कराना है करा दीजिए यहां हमारी टीम में अपने अपने पुत्र को, क्योंकि हमारे पास भगवान की कृपा है, एक नहीं हजारों होंगे श्री प्रभुपाद जी ने ऐसा घर बनाया है, ऐसे एक नहीं ऐसे 1 करोड़ भी यदि आ जाए तो शांति से रह सकते हैं, खा पी सकते हैं और भजन कर सकते हैं। और इस घर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। पूरी दुनिया को रहने के लिए प्रभुपाद जी ने घर बनाया है, स्वागत है सबका। अब बारिश आने की तैयारी है। यहां पर गौतम बुद्ध की कथा को विराम करता हूं। भगवान गौतम बुद्ध की, अब भगवान का अंतिम अवतार 10वां अवतार, केशव धृत कल की रूप जय जगदीश हरे। यह अवतार हुआ नहीं है, यह भविष्य में होने वाला है। भगवान के जो अवतार होते हैं उनका वर्णन पूर्व पहले से ही शास्त्र में बता दिया जाता है। तो संक्षिप्त में यही सुनिए, ये जो कलयुग चल रहा है ये कलयुग का प्रारंभ है। कलयुग की अवधि 5000 वर्ष की है और अभी मात्र कलयुग के 500 वर्ष बीते हैं। क्षमा कीजिए, कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष की है और कलयुग के मात्र 5000 वर्ष बीते हैं। ये कलयुग का प्रारंभ है, कलयुग की प्रथम संध्या समझिए। और कलयुग के प्रारंभ में ही इतने अत्याचार, इतने पाप, इतना पाखंड शुरू हो गया है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा ये कलयुग में पाखंड और अत्याचार बढ़ते जाएंगे। और आज लोग पशु हिंसा कर रहे हैं, पशुओं का वध कर रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि संसार के लोग पशुओं को मारते हैं, एक भाई अपने भाई को काट कर खा जाएगा। ऐसा एक दिन आएगा, एक दिन ऐसा आएगा कलयुग में लोगों का कद मात्र 1.5 फुट का हो जाएगा। धीरे धीरे कद कम होता जा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि धर्म के नाम पर मात्र पाखंड बचेगा। ये जो कृष्ण की भक्ति करने वाले, प्रचार करने वाले, भागवत कथा करने वाले, ये सब मात्र 10,000 वर्ष तक रहेंगे। प्रभुपाद जी ने भविष्यवाणी की है कि यह शुद्ध भक्ति का प्रचार मात्र 10,000 वर्ष तक होगा और 10,000 वर्ष के बाद भक्ति के नाम पर पाखंड होगा। वेदों का उल्लंघन करेंगे, शास्त्र की बात को लोग मानेंगे नहीं और घर घर में पापी भरे पड़ेंगे और इस संसार में अत्याचार होगा। और उस स्थिति में भगवान को अवतार धारण करना पड़ेगा और उस समय भगवान कल्कि के रूप में अवतरित होंगे और अपनी भुजा से, अपने तलवार से जितने भी पाखंडी हैं, जितने भी अधर्मी हैं, वह सब का भगवान वध करेंगे। इस प्रकार से कल्कि अवतार इस कलयुग में भगवान धारण करेंगे और यह अवतार शंबल ग्राम में अर्थात मुरादाबाद नाम के जिले में भगवान का अवतार होगा। पिता का नाम विष्णु यशा होगा। जो भगवान के भक्त होंगे उनके पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण कल्कि अवतार धारण करेंगे। इस प्रकार यहां पर 10 अवतार की कथा समाप्त होती है। अब आप इतना ही संक्षिप्त में सुन लीजिए, केवल 10 से 15 मिनट में आपको सार की बात बताने जा रहा हूं। यह कलयुग चल रहा है और इस कलयुग में हम जिस युग में बैठे हैं, जिस समय में हैं, यह समय सुवर्ण समय माना गया है, गोल्डन टाइम। यदि यह समय बीत गया तो आगे चलकर इस प्रकार से भागवत का प्रचार, भक्ति का प्रचार कभी नहीं होगा। एक तो मनुष्य जीवन दुर्लभ और मनुष्य जीवन में भी ऐसा जन्म चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों के बीच में यह जन्म बहुत दुर्लभ है। तो यह दुर्लभ मनुष्य जीवन में हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सुलभ हुई है, हमें एक मौका मिला है कृष्ण की भक्ति करने का। इसलिए आप सब भक्तों से निवेदन है, आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कीजिए। कई बार मन में होता है कि भगवान की भक्ति कैसे की जाए। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कहते हैं अलग अलग युगों में भगवान की भक्ति करने के अलग अलग साधन होते हैं। सतयुग में यदि भगवान की प्राप्ति करनी है, सुखी होना है, तो कहते हैं कृते ध्यायतो विष्णु। सतयुग में सुखी होने के लिए, भगवान की प्राप्ति करने के लिए ध्यान करना होता है। त्रेता युग में भगवान की प्राप्ति करने के लिए यज्ञ करना होता है, यज्ञ के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। द्वापर युग में भगवान की प्राप्ति करने के लिए द्वापरे परिचर्यायाम, भगवान के अर्च विग्रह की सेवा। परंतु कलयुग में यदि भगवान की प्राप्ति करनी है तो कलो तद हरि कीर्तनात्, कलयुग में मात्र भगवान का नाम लेने से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। वैसे तो कलयुग में बहुत दोष है, कलेर दोषे निधे राजन, पदम पदम यत विपदा, कदम कदम पर दोष है, पाप है, अत्याचार है। परंतु कलयुग का एक गुण क्या है, कलेर दोषे निधे राजन अस्ति एक महान गुण। कलयुग का गुण क्या है, अन्य युगों में हजारों हजारों वर्षों के बाद भगवान की प्राप्ति होती है, कलयुग में मात्र भगवान का नाम लेने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे।
कलयुग में भगवान की प्राप्ति करने के लिए मात्र भगवान का नाम लेना चाहिए। कभी कभी मन में प्रश्न होता है किस भगवान का नाम, कृष्ण का, क्योंकि कृष्ण ही एकमात्र भगवान है और बाकी सब उनके अवतार और इत्यादि ब्रह्मा इत्यादि इंद्र सब देवी देवता है। देवी देवताओं से श्रेष्ठ अवतार और अवतार से श्रेष्ठ साक्षात भगवान कृष्ण है। यदि कोई कृष्ण की भक्ति करते हैं तो कृष्ण की भक्ति करने से अन्य सभी अवतार भी प्रसन्न हो जाते हैं, अन्य देवी देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं, पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं, सब लोग सुखी हो जाते हैं। इसलिए आप लोगों को अन्य किसी पितृओं को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं, अन्य किसी देवताओं की उपासना करने की जरूरत नहीं, एकमात्र कृष्ण की भक्ति कीजिए, उनमें सबकी भक्ति हो जाएगी। यथा तरो मूल निशेच नैन तृप्यंति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराश्च यथे इंद्रियाणाम तथैव सर्वारहणम चुतेज्या। जैसे वृक्ष के जड़ में पानी डालने से उस वृक्ष के डाली और पत्ते और फल में पानी पहुंच जाता है, वैसे कृष्ण की भक्ति करने से सभी देवता सभी पितर सभी आत्मा परमात्मा सब की भक्ति हो जाती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अन्य सब उपासनाओं को छोड़कर एकमात्र कृष्ण की भक्ति करते हैं। आपने 7 दिन से भागवत कथा श्रवण की, आपने देखा कि यह सभी इस संसार के लोग देवी देवताओं की उपासना करते हैं, परंतु उस देवी देवताओं को भी भगवान विष्णु और कृष्ण के पास जाना पड़ता है। देवी देवताओं के ऊपर आपत्ति आती है तब वे कृष्ण के पास जाते हैं। इसलिए सर्वोच्च भगवान एकमात्र कृष्ण है। कृष्ण की भक्ति करने से ही इस संसार में आप पूर्ण रूप से सुखी हो सकते हो। तो कृष्ण की भक्ति कैसे की जाए, कृष्ण का नाम लेकर, कृष्ण की कथा सुनकर। कृष्ण की कथा तो आप 7 दिन सुन रहे हैं, और भी यहाँ पर सीडी कैसेट खरीद कर आप अपने घर पर सुन सकते हैं, परंतु इससे भी बड़ा काम है भगवान से कृष्ण का नाम लेना। तब आप कहोगे कृष्ण के तो करोड़ों नाम है, कौन सा नाम कलयुग में कौन सा मंत्र जपना चाहिए। तो देखिए इस संसार में कई सारे गुरु होते हैं, अपने अपना मन घड़त मंत्र बताते हैं। हम सबको किसी की बातों में नहीं आना है, वेद व्यास जी ने शास्त्र में जो लिखा है उस बात को हमें मानना है। वेद व्यास जी ने अनेक पुराण लिखे, मैं एक प्रमाण आपको दे रहा हूं, पद्म पुराण। वेद व्यास जी पद्म पुराण में लिखते हैं कौन सा मंत्र जपना चाहिए, कहते हैं धात्रिश अक्षरम मंत्र नाम षोडश कान्वितम प्रजपन वैष्णवो नित्यम राधा कृष्ण स्थलम लभेत। संस्कृत श्लोक है, आप इसे समझ सकते हैं। राधा और कृष्ण जहां पर रहते हैं उस धाम को यदि प्राप्त करना है तो आपको कौन सा मंत्र जपना है, वे संस्कृत में पद्म पुराण में लिखे हैं। क्या लिखे हैं, द्वात्रिश अक्षरम मंत्र। जिस मंत्र में द्वात्रिश, 30 माने 30, द्वा माने दो, दो प्लस तीस बत्तीस। जिस मंत्र में 32 अक्षर हो और नाम षोडश कान्वितम, और जिस मंत्र में 16 नाम हो, ऐसा मंत्र जपने से प्रजपन वैष्णव नित्यम राधा कृष्ण स्थलम लभेत, व राधा कृष्ण के पास जा सकता है। कैसा मंत्र? जिस मंत्र में 32 अक्षर हो और 16 नाम हो, बताइए वह कौन सा मंत्र है?
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
आप सब जागृत हो जाइए, ये मैं मेरे मन की बात नहीं कर रहा हूँ, वेद व्यास जी का यह पद्म पुराण का प्रमाण है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति प्रामाणिक कार्य करता है, नहीं कि किसी भी की भी भावुकता में किसी भी बात में आ जाए और कुछ भी जपने लगे। यदि सुखी होना चाहते हैं इस महामंत्र को जपिए, और केवल पद्म पुराण ही नहीं, अनेकों पुराण, कलि संतरण उपनिषद में तो क्लियर कहा गया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो मंत्र है इति षोडश काम नाम्न कलि कल्मष नाशनम, यह महामंत्र ही कलि के दोषों का नाश करता कर सकता है और भगवान की प्राप्ति करा सकता है। इसलिए आप सब भक्तों से निवेदन है, यदि सुखी होना चाहते हो, इस प्रकार की बारिश चाहते हो, ये तो सब भौतिक बातें हैं। यदि भगवान के धाम को प्राप्त करना चाहते हो, हरे कृष्ण महामंत्र जपना चाहिए।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्रीमद् भागवत का अंत करते समय सुद गोस्वामी भागवत के अंतिम श्लोक में कहते हैं, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने से ही हमारे जीवन में सुख आएगा, हमारे जीवन का उद्धार होगा। भगवान श्री कृष्ण का नाम जपिए, महामंत्र जपिए, सुखी हो जाइए। मैं जानता हूं आपके बहुत सारे प्रश्न होंगे कि यह भगवान का महामंत्र हम कभी भी जप सकते हैं। हाँ, अन्य वेदों के जितने भी मंत्र हैं वो मात्र मंत्र है, गायत्री भी मात्र मंत्र है, परंतु ये हरे कृष्ण को महामंत्र कहा जाता है। महामंत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह मंत्र कभी भी कहीं भी कैसे भी कोई भी और किसी भी अवस्था में जपा जाता है। स्त्री पुरुष मासिक धर्म चल रहा हो, उस अवस्था में भी स्त्री यह महामंत्र जप सकती है। सोते हुए, खाते हुए, चलते हुए, कहीं भी इस महामंत्र को जपा जा सकता है, इसलिए इसे महामंत्र कहते हैं। तो आप सब भक्तों को निवेदन है, अब समय बहुत कम हमारे हाथ में है, वैसे भी जीवन में भी बहुत कम समय बचा है, यदि सुखी होना चाहते हैं तो इस महामंत्र को जपिए, अपने जीवन को धन्य कीजिए।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
वैसे कहने और सुनाने की बहुत सारी बातें हैं, शास्त्र अपार हैं, भागवत दिव्य ग्रंथ है, परंतु समय का अभाव है। परंतु आप निश्चिंत रहिए, यहाँ पर दो ब्राह्मण बैठे हैं, ये दोनों ब्राह्मणों ने मिलकर श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक का पाठ किया है, श्रीमद् भागवत को यहाँ पर संपूर्ण समाप्त किया है। परंतु भक्तों, जाते जाते हम आपको इतना ही कहना चाहते हैं कि यदि आप जीवन में सुखी होना चाहते हो, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कीजिए, और कृष्ण की भक्ति का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण का नाम, इस महामंत्र को जपना। और इसी के साथ यदि और भी कुछ करना चाहते हो, चार नियम का पालन कीजिए, चाय कॉफी कांदा लहसुन छोड़ दीजिए, मांसाहार छोड़ दीजिए, नशा छोड़ दीजिए, और जुआ खेलना छोड़कर पर स्त्री संग छोड़ दीजिए। और भी आप करना चाहते हो तो एकादशी व्रत का पालन कीजिए, मात्र फराल खाकर एकादशी उपवास कीजिए। और भी करना चाहते हो, प्रतिदिन आपके घर पर भगवान श्री कृष्ण के फोटो को रखकर उनकी आरती पूजा उपासना कीजिए। और सभी भक्तों को चाहिए अपने घर पर तुलसी जी का पौधा हो, तुलसी की प्रदक्षिणा करना, प्रणाम करना, यह भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है। और आपके गांव में हमारे मुंबई के अनेक भक्त रहते हैं, तो जब कभी भी हमारे मुंबई से कुछ साधु संत भक्त आते हैं तो उनके मुख से इसी प्रकार से आप कथा सुनिए, और यदि भगवान की इच्छा रही, आप में श्रद्धा रही, तो निश्चित हम अगले साल भी यहाँ पर आएंगे, वापस मिलेंगे और वापस भगवत कथा करेंगे। और यदि मानो हम नहीं आ पाए, क्योंकि इस काल का कोई भरोसा नहीं है कब रहेंगे कब चले जाएंगे, परंतु आप यह मत समझिए हम आपसे दूर हैं। आपके हृदय में जो परमात्मा बैठे हैं वही हमारे हृदय में बैठे हैं। बस एक बार उस परमात्मा को याद कर लेना, निश्चित हम आपके निकट आ जाएंगे। और आपकी जब हमें याद आएगी, हम भगवान को याद करेंगे। वास्तव में हमारा और आपका संबंध भगवान श्री कृष्ण के कारण बंधा है। और मात्र 7 दिन में इतना प्रेम, भाई भाई में भी जितना प्रेम नहीं होता है उतना प्रेम आप और हमके बीच में हो चुका है। इसका कारण मात्र कृष्ण है। यदि कृष्ण की भक्ति करते रहोगे यह संबंध रहेगा। आप सब भक्तों से यही प्रार्थना करते हैं, आप निरंतर भगवान श्री कृष्ण का नाम जपिए, अपने जीवन को धन्य कीजिए। भगवान का नाम कुछ लोग उंगली पर गिनते हैं, कुछ लोग मन में लेते हैं, परंतु भगवान का नाम माला पर जपना चाहिए। ये माला जो है इसका मुख्य मोती है। आपको जो किताब दी गई है उस मुख्य मोती के ऊपर पंच तत्व मंत्र बोलना है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। और वह मंत्र बोलकर फिर एक मोती के ऊपर जाकर एक महामंत्र, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे राम 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 हरे हरे,
इतना बोलकर फिर दूसरे मोती के ऊपर एक मंत्र। इस प्रकार एक एक मोती के ऊपर एक एक महामंत्र जपना है। ये माला में 108 मोती है। 108 बार जब आप महामंत्र बोलते हो तब एक माला समाप्त हो जाती है। जब एक माला समाप्त हो गई तो यहां से घूम जाइए, फिर से आप माला जपिए। इस प्रकार से भगवान के नाम की माला, महामंत्र की माला जब जपते रहिए। याद रहिए ये उंगली माला को स्पर्श न हो, क्योंकि इस उंगली के द्वारा हम बहुत पाप करते हैं। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छी है, बुरी है, ये वो, इसलिए इस उंगली को आप दूर रखिए। इस प्रकार आप भगवान के नाम का मंत्र जप सकते हैं। जो लोग इस माला के ऊपर भगवान के नाम का मंत्र जपना चाहते हैं, कथा के बाद मैं यहीं पर बैठा हूं, आप लाइन से आइए और यह माला हमारे हाथ से आप ग्रहण कर सकते हैं, महामंत्र को जप सकते हैं। महामंत्र आपकी किताब में लिखा है, पंचतत्व मंत्र भी लिखा है, इसके द्वारा आप महामंत्र जपिए। और सबसे पहले मैं यह माला प्रधान जी को देना चाहता हूं, कृपया करके।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
क्योंकि प्रधान हमेशा आगे होते हैं, माला जपने में भी सबसे आगे। ये माला जपने के लिए कोई आपको धन नहीं देना है, कोई रकम नहीं है। कन्यालाल बड़े प्रेम से वृंदावन से लेकर आए हैं। बस एक ही नियम आपको लेना है कि प्रतिदिन इस माला आप जपोगे, कम से कम 2 या 4, ज्यादा से ज्यादा 15, 16, 20 भी जप सकते हैं। तो आइए प्रधान जी आ रहे हैं, आज से कितना माला जपेंगे? कम से कम 2, अभी वादा करना है आपको। 2 माला जपने में 15 मिनट होगा। प्रधान जी आज से कम 2 माला जपना चाहते हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ये माला जपने से जितने भी बाधाएं हैं, ये भूत प्रेत का जितना भी चक्कर है, ये सब निकल जाएगा। किसी को कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये माला में इतना पावर है, इतनी शक्ति है, जो व्यक्ति इस माला को जपता है उससे प्रेत यात्मा भूत पिशाच करोड़ों किलोमीटर दूर रहते हैं, निश्चिंत हो जाइए। ऐसे अनेकों प्रमाण हमारे साथ हैं। हमारे बीच में एक माताजी बैठे हैं, 10 साल से उसका बच्चा मुंबई में रहता है, 10 साल से उस माता जी के अंदर प्रेत आता है, आत्मा आती है और उसे परेशान करती है। उनके लड़के ने कुछ दिन पहले मुझे आकर कहा, ये माता जी खड़ी है। उनके लड़के ने आकर कहा कि मैं बहुत दुखी हूं, मेरा बहुत धन खर्च हो गया, यहां के लोग पैसे ले लेते हैं परंतु कुछ कर नहीं पाते हैं। मैंने कहा मां मंत्र जपने के लिए कहिए, जिस दिन से मां मंत्र जपना शुरू किया उस दिन से वो आत्मा इस शरीर से भाग गई और आज ये माता कितनी प्रसन्न है, कितनी सुखी है। आप भी इस प्रकार से सभी प्रेत आत्माओं से बच सकते हो इस मां मंत्र को जपकर। सभी भक्तों से निवेदन है कथा के बाद अवश्य यहां पर आए, महामंत्र जपने के लिए माला ग्रहण करें और अपने जीवन को धन्य की करें। मैं यहां पर गुरु वैष्णव भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए इस भागवत सप्ताह को समाप्त कर रहा हूं और अंत में आपको यही कहना चाहता हूं, बैठिए आपको बाद में देंगे, कि 7 दिन कथा के दौरान यदि हमारे मुख से कुछ कठोर शब्द निकल गया हो, कुछ कमी रह गई हो, कुछ भूल हो गई हो और हमारी कठोर वाणी के द्वारा किसी के हृदय में ठेस पहुंची हो तो कृपया करके आप हमें क्षमा कीजिएगा। किसी की वाणी को, किसी के हृदय को दुखी करना ये हमारा इरादा कभी नहीं था। हम तो मात्र भागवत और भागवत के सिद्धांत को प्रकट करना चाहते हैं, उसमें यदि किसी के हृदय में दुख हुआ हो तो आप हमें क्षमा करेंगे। इस भागवत को यहाँ पर संपन्न करने में, सफल करने में अनेक भक्तों का हाथ है और जिसमें सबसे मुख्य हाथ हमारे बन्ना राम जी, जिन्होंने भागवत को समझा, भागवत की महिमा को जाना और यहाँ पर भागवत का अनुष्ठान करके आयोजन किया। मैं भूरी भूरी धन्यवाद देता हूँ बन्ना राम जी को, उनके परिवार को और उनके जितने भी सहयोगी हैं, बहुत सारे नाम हैं मुझे याद नहीं है, जिन्होंने इस भागवत कथा को यहाँ पर सफल बनाया है। और मैं चाहता हूं बन्ना राम जी कुछ देर के बाद यहाँ पर आए और सबका नाम लेकर सबका धन्यवाद प्रकट करें। परंतु भक्तों इसी के साथ इस भागवत कथा में 4 चांद लगाने वाले अनेक भक्त हैं और जो भक्त रात दिन हमारे साथ रहते हैं, सेवा करते हैं और इस माइक के द्वारा, साउंड के द्वारा जो बहुत सुंदर सेवा देते हैं, वैसे हमारे मेहुल प्रभु को मैं बुरी बुरी धन्यवाद देता हूं कि बहुत मेहनत करके वे यहां पर अपनी उपस्थिति रखते हैं और जैसा आवाज चाहिए ऐसा आवाज हमें प्रदान करते हैं। इसी के साथ मैंने अपनी आंखों से देखा है यहां पर कई लोग सेवा करते हैं परंतु सभी की सेवाओं में से सर्वश्रेष्ठ सेवा रही हमारे रमेश प्रभु की। पहली बार देख रहा हूं इस भक्त को राजस्थान में और मुझे पता चला है कि वे मुंबई में रहते हैं और अभी अभी मुझे पता चला है कि वे भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। स्वागत है, नरवर गांव से निर्मोही मिले और गुलर से रमेश जी मिले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भी अनेक भक्त इस गांव में रहने वाले, इस गांव के वासी, अनेक भक्तों का मैं आभार व्यक्त करता हूं और सबसे ज्यादा आभार व्यक्त करता हूं इस कथा को सुनने वाले भक्त। बहुत धूप भी आपने सहन की और बारिश भी सहन की और विपुल मात्रा में आप यहाँ पर अपनी उपस्थिति दिए हो, आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद। और श्याम सुंदर, कृष्ण बलराम, गौर निताय और प्रभुपाद जी से यही प्रार्थना करता हूँ, भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में सुख संपत्ति और उनकी शुद्ध भक्ति प्रदान करें आपका जीवन धन्य हो, सुखमय हो और मृत्यु के बाद आप भगवान की प्राप्ति करो। हरे
कृष्णा हरे कृष्णा।
यहाँ पर श्रीमद् भागवत सप्ताह का विराम होता है। मैं निवेदन करता हूँ यशवंत और फिर निवेदन करता हूँ बन्नाराम जी से कि आप अपनी भाषा में गुलर गांव के भक्तों को संबोधित कीजिए, सब भक्तों का आभार व्यक्त कीजिए।